इस संदेश की श्रृंखला को डॉक्टर बिल माउंस के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका नाम है बाइबल की 52 मुख्य घटनाएं। और अधिक सामग्री के लिए आप कृपया जाएं www.biblicaltraining.org पर।
परमेश्वर राजा है, पहला सैमुएल। आज की सुबह मैं बाइबल की 13वीं कहानी की ओर देखना चाहता हूं और यह मेरी 13 कहानियों में से सबसे पसंदीदा है, शायद 52 में से सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। हम पहला सैमुएल की कहानी की ओर देखने जा रहे हैं और यह है शमूएल और शाऊल की कहानी और उसके पश्चात परमेश्वर राजा है। हम इसकी धर्म शिक्षा के ऊपर देखेंगे। आए प्रार्थना करें। पिता, आप सच में राजा हैं और मनुष्य की सामर्थ और मनुष्य की इच्छा के होते हुए भी हम आपके आगे यह मानते हैं कि आप राजा हैं और इतिहास आपके नियंत्रण में है और जो लोग इतिहास बनाने वाले दिखते हैं वह लोग भी आपके नियंत्रण में हैं। पिता, ऐसी कई बातें हैं जो हम नहीं समझते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि यह कैसे होता है। हम यह नहीं समझते हैं कि भले और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के होने के बावजूद भी इस संसार में बुराई कैसे हो सकती है। फिर भी हम विश्वास से यह कहते हैं कि आप हर समय पर भले हैं और आप राजा हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम हन्ना के भजन को आज सुबह देखते हैं तो हम यहाँ से कायल होकर उत्साहित होकर जाएंगे चाहे कुछ भी हो, और हम यह समझते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और इतिहास आपके नियंत्रण में है, यीशु के नाम में, आमीन। पहला सैमुएल, अंतिम न्याय। इसराइल के इतिहास में शमूएल अंतिम न्यायी था और वह एक नबी और याजक भी था। और पहले शमूएल की पुस्तक जो कि आपकी बाइबल में है उसमें हम शमूएल के जीवन के विषय में और शाऊल के जीवन के विषय में पढ़ते हैं जो कि इसराइल का एक मुख्य राजा था। जैसे हमें दाऊद का परिचय मिलता है जो कि इसराइल का दूसरा मुख्य राजा बनता है, परंतु पहले शमूएल की पुस्तक में हम इसराइल के इतिहास में एक संक्रमण को देखते हैं, क्योंकि पहला शमूएल की पुस्तक में हम परमेश्वर के राज्य से राजा के राज्य के संक्रमण को एक देश में जिसके ऊपर परमेश्वर शासन करता है देखते हैं। उसने लोगों, न्यायियों और नबियों के द्वारा कार्य किया होगा, परंतु परमेश्वर के राज्य का अर्थ है कि परमेश्वर मुख्य व्यक्ति है। और पहला शमूएल में हम इस संक्रमण को देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का राज्य आ रहा है, क्योंकि इसराइल के लोग अपने ऊपर राजा चाहते थे क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। इसलिए ऐतिहासिक रूप में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह धर्मशास्त्र की शिक्षा के अनुसार एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और यह नाटक है जो चल रहा है कि परमेश्वर इतिहास में हस्तक्षेप करता है। शमूएल का जन्म। शमूएल की पुस्तक एक व्यक्ति जिसका नाम एलकना है की कहानी से शुरू होती है। उसकी दो पत्नियां थी, पनीना और हन्ना। हन्ना बांझ थी, हन्ना के संतान नहीं हो सकती थी। और जैसे आप कल्पना कर सकते हैं कि दो पत्नियों में से एक होना जिसकी कोई संतान नहीं है, वह अच्छा घरेलू जीवन नहीं बना सकती थी। एलकाना प्रत्येक वर्ष अपने परिवार के लिए शिलोह में प्रभु के सामने बलिदान अर्पण करने के लिए जाता था और हम पहला शमूएल में उन्हें शिलोह की यात्रा पर जाते हुए देखते हैं। और हम हन्ना की प्रार्थना की कहानी को देखते हैं। यह एक सुंदर प्रार्थना है। तब शीलों में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली जाजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर शुरा फिरने ना पाएगा। दूसरे शब्दों में, जब नाजरी होने की वाचा लेगा और समस्त जीवन परमेश्वर के प्रति समर्पित रहेगा। और निस्संदेह यह प्रार्थना बहुत ही तीक्ष्ण थी और जाजक ने सोचा कि उसने मद पी रखी है और 12 आयत, और इसलिए एली ने उसे मद से मतवाली समझ लिया। और जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके ऊंट तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। शायद उसने अपने विषय में बहुत अच्छा महसूस किया होगा। हन्ना ने कहा, नहीं ये मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाखमधु पिया है ना मदिरा, और मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओशी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हन्ना संतान पैदा नहीं कर सकती थी और प्राचीन संसार में बांझ होने से कोई बड़ा शाप नहीं था, यह ऐसे अनुवाद किया जाता था कि यह एक चिन्ह है कि परमेश्वर आपके साथ अप्रसन्न है, इसलिए उसके कोई संतान नहीं थी और वह अपने पति की दूसरी पत्नी से मिलजुल कर नहीं रह सकती थी। एक पति होने के लिए यह एक अच्छा कारण है, परंतु वह जानती है कि किसके पास वह जा सकती है या नहीं। वह प्रभु के पास जाती है और अपने हृदय को प्रभु के आगे उंडेल देती है और यह प्रार्थना ऊर्जा के साथ करती है और गुबार के साथ करती है। और एली सोचता है कि उसने मत पी रखी है। मैं सोचता हूं कि क्या कभी मैं प्रार्थना में इतना व्यकुल हुआ कि कोई समझेगा कि मैंने मत पी रखी है अथवा मैं बेअकल हूं। हन्ना शिलो को छोड़कर जाती है और एली के शब्द सत्य होते हैं। सैमुअल का जन्म होता है और जब सैमुअल इतना जवान हो जाता है कि वह अपनी माता के बिना जी सकता है तो वह शिलो वापस जाते हैं और एली को ढूंढते हैं और वह उसे ढूंढ लेती है। पहले अध्याय की 26 आयत में हम पढ़ते हैं, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास जही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। दूसरे शब्दों में कि आपको याद है मैं वह औरत हूं जिसे आपने सोचा था कि उसने मद पी रखी है, मैं वही हूं। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा से मुंह मांगा वर दिया है और इसीलिए मैं भी उसे यहोवा के अर्पण कर देती हूं कि यह अपने जीवन पर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया और यह एक औरत की जो प्रभु के सामने व्यकुल थी उसकी महान कहानी है। वह उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है और वह अपनी वाचा को पूरा करती है और शायद यह इतना आसान काम नहीं था जिसे वह कर रही थी। वह एक बालक के लिए इतनी व्यकुल होती कि जब वह उसे प्राप्त कर लिया तो वह वाचा को पूरा करती है और उसे वापिस प्रभु की सेवा के लिए दे देती है। परंतु यह उसने किया और शैमुल एली के साथ मंदिर में रहा और वहीं बड़ा हुआ। हन्ना का स्तुति गान, दूसरा अध्याय। मैं सोचता हूं पहले सैमुअल का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और शायद पहला और दूसरा सैमुअल का यह सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि पहला सैमुअल 2 में हमारे पास हन्ना की प्रार्थना है और यह वास्तव में परमेश्वर की स्तुति का गीत है, क्योंकि उसकी स्थिति को मुख्य रखते हुए जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया है उसे मुख्य रखते हुए वह स्तुति में फूट पड़ती है। और जैसे हम इन आयतों को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि हन्ना ने क्या सीखा, और यही वह प्रश्न है जिसे मैं चाहता हूं कि आपके मन से भी गुजरे। हन्ना ने क्या सीखा? जीवन के कौन से अनुभव थे जहां परमेश्वर ने हस्तक्षेप की वजह से उसने अपने विषय में सीखा और परमेश्वर के विषय में सीखा? और इसलिए दूसरे अध्याय में पहली आयत में यह इस बात की घोषणा से शुरू करती है, जो कुछ भी उसके पास है उसके साथ वह परमेश्वर की स्तुति करेगी। और हन्ना ने प्रार्थना की और कहा, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। हन्ना कह रही है, मैं परमेश्वर की स्तुति करने जा रही हूं और मैं जो कुछ भी मेरे पास है उसके साथ मैं स्तुति करने जा रही हूं, अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपने मुख के साथ मैं स्तुति करने जा रही हूं। और फिर एक बाइबल की रीति के अनुसार वह वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करती है। वह कहती है, प्रभु की स्तुति हो। यह स्तुति नहीं है, ठीक, परमेश्वर की स्तुति करने का अर्थ है घोषणा करने के वह कौन है और उसके पश्चात उसने क्या किया है। स्तुति यही है। एक आयत स्तुति की गुहार है। वह कहती है, जो कुछ मेरे पास है उसके साथ मैं उसकी स्तुति करने जा रही हूं, अब मैं उसकी जो वह है उसके लिए स्तुति करूंगी। आयत 2 और 3, हन्ना कह रही है, मैं परमेश्वर की स्तुति करने जा रही हूं, मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे पूर्ण हृदय शक्ति और मुख्य के साथ मैं परमेश्वर की स्तुति करने जा रही हूं। और फिर एक अच्छी बाइबल की रीति से वह वास्तव में परमेश्वर की स्तुति करती है। वह कहती है, परमेश्वर की स्तुति। यह स्तुति नहीं है, ठीक है, परमेश्वर की स्तुति करना इस बात की घोषणा करना है कि वह कौन है, उसने क्या किया, यही स्तुति है। इसलिए एक आयत स्तुति की बुलाहट है। वह कहती है, जो कुछ मेरे पास है उसके साथ मैं उसकी स्तुति करने जा रही हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल का अहंकार की बातें मत करो, अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। पहली आज्ञा कितनी सुंदर पुष्टि है जो दोबारा से की गई है, एक पुष्टि कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है। और हन्ना अपने जीवन में उसकी प्रतियोगिता दूसरे देवताओं से नहीं करने जा रही है। हन्ना के जीवन में कोई देवताओं का मंदिर नहीं है, उसके पास कोई देवताओं का संग्रह नहीं है, जिन देवताओं की वह उपासना करे उनमें सबसे ऊपर वह यहवे परमेश्वर को रख दे। एक ही परमेश्वर है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। और उसके पश्चात वह चट्टान के एक खूबसूरत रूपक की ओर जाती है, और विशेष रीति से पुराने नियम में यह रूपक बहुत ही इस्तेमाल किया गया है, जब वह इस बात की घोषणा करती है कि हमारे परमेश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं है, तो वह इस बात की घोषणा कर रही है कि मैंने अपनी सुरक्षा को प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर में ही मैं अपनी सुरक्षा, सामर्थ्य, स्थिरता और शरण स्थान को पाती हूं। वह परमेश्वर मेरी चट्टान है, वह मेरी मुक्ति है, वह टलता नहीं। परमेश्वर कौन है? उसकी अद्भुत घोषणा कि एक ही परमेश्वर है और वह अपनी संतान के लिए चट्टान है। परंतु 3 आयत में वह इस बात पर भी जोर देती है कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वह अंतिम न्यायी है और उसका न्याय उसके सत्य के ऊपर निर्धारित करता है। जैसे जय भजन अपने आप को खोलता है तो यह एक धर्म शिक्षा को प्रस्तुत कर रहा है। परमेश्वर जो न्यायी है वह अभिमान से बहकर न्याय नहीं करता है। जैसे हम शाऊल के जीवन में देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं, परमेश्वर का न्याय मानव उपलब्धि के द्वारा बहकर नहीं होता है, परंतु परमेश्वर जानता है सत्य क्या है और वह जो सत्य है उसी के आधार पर वह न्याय करेगा। परमेश्वर कौन है? उसकी स्तुति में अद्भुत वाक्य है। परंतु यह कहने के पश्चात स्तुति के अगले स्तर की ओर वह जाती है और आयत 4 में और आने वाली आयतों में जो परमेश्वर ने किया उसके लिए परमेश्वर की स्तुति करती है और जो घोषणा हन्ना करने जा रही है कि परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी प्रभुता में और जो कुछ को वह आशीष देने को चुनता, कुछ को वह शाप देने को चुनता है। अब शाप और आशीष की भाषा का इस्तेमाल हन्ना के भजन में नहीं किया गया है, हालांकि यह पूर्ण बाइबल में पाई जाती है। इसराइली लोगों ने जब देश पर विजय प्राप्त की तो एक समय था जब वह 2 पहाड़ों पर गए, आधे कबीले एक पहाड़ पर और वह परमेश्वर की आशीष को बोल रहे थे और आधे लोग दूसरे पहाड़ पर थे और वह परमेश्वर के शापों को उनके आज्ञा ना मानने की वजह से बोल रहे थे। इस समय तक आशीष और शाप का शीर्षक पुराने नियम में पाया जाता है और वह वास्तविक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही है, परंतु वह यही बोल रही है क्योंकि वह भाग्य के उत्क्रमण के विषय में बात कर रही है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी प्रभुता में इतना सामर्थ्य है कि वह लोगों के भाग्य को उत्क्रमण कर सकता है। वह विरोधाभासों की 7 बातों को बताने जा रही है। पहला विरोधाभास है प्रबल और निर्बल का, और विचार यह है कि परमेश्वर ने बलवान लोगों को लिया है और उन्हें निर्बल बना दिया और परमेश्वर ने निर्बलों को लेकर बलवान बना दिया। वह लोगों के भाग्य को बदल सकता है, इसलिए यह विरोधाभास है प्रबल और निर्बल, बरे हुए और भूखे, बंजर और उपजाऊ, मुर्दा और जीवित, बीमार और स्वस्थ, कंगाल और धनी, अधीन और विनम्र और ऊंचा। आए इन आयतों को देखते हैं। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी और जो भूखे थे वह फिर से ऐसे ना रहे, वरना जो बांझ थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता गुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है। यह बीमार और स्वस्थ का विरोधाभास है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है और फिर वह धन के ऊपर प्रभाव डालती है। वह कंगाल को दूली से उठाता है और दरिद्र को घूरे से निकाल कर खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन का अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। मैं यहां पर एक बात जोड़ना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति जो बीमार है यह जरूरी नहीं कि वह दुष्ट है। जहां पर यह शिक्षा नहीं दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है वह यह है कि परमेश्वर नियंत्रण में है और वो जो चाहे वह कर सकता है, एक अच्छा धर्मशास्त्र का वाक्य। यदि इसका अर्थ है लोगों के भाग्य को उल्टा करना तो वह अपने अनुग्रह और प्रभुता के द्वारा यह कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे आप सोचते हैं कि वह यह कर सकता है, कैसे परमेश्वर सोचता है कि वह लोगों के भाग्य को बदल सकता है। इसका उत्तर 8 आयत के दूसरे हिस्से में है, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है, जिस कारण से परमेश्वर लोगों के भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी का है। पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी की नींव जिसके ऊपर टिकी हुई है वह भी उसी की है और प्रत्येक जन जो इस पृथ्वी पर रहता है वह भी उसी का है और वह प्रभु है और वह जो चाहे कर सकता है, वह राजा है, वह नियंत्रण में है। ठीक है, इस वास्तविकता को जानते हुए, परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, इस बात की वास्तविकता को जानते हुए कि वह कुछ को आशीष देता है, कुछ को शाप देता है, प्रश्न यह है आप उसकी भलाई को कैसे जानते हैं? कौन है जिनको वह आशीष देगा? मेरा अर्थ है परमेश्वर मनमौजी नहीं है, एक तरफ से वह जाकर जो चाहे वह नहीं करता है, परंतु वह किनको आशीष देगा? कौन लोग हैं जो दुष्ट हैं जिनको वह शाप देगा? ठीक है, इसका उत्तर पाया जाता है 9 और 10 आयत में। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रखेगा, वह लोग हैं जिनको वह आशीष देगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। वह लोग हैं जिनको वह आशीष देगा, जो यहोवा से झगड़ते हैं वह चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में से गरजेगा। यह एक महान रूपक है या नहीं? यह पुराने नियम में पाया जाता है, और परमेश्वर दुष्टों के विरोध में गरजेगा और उन्हें दंड देगा। यहोवा पृथ्वी की शोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। कितने अच्छे बागे परमेश्वर पलट देता है। परमेश्वर किन लोगों के विरोध में गरजता है? दुष्टों के विरोध में। वह किन लोगों को सामर्थ और भोजन और स्वस्थ के साथ आशीष देता है? उसके विश्वास योग्य लोगों को। मुझे एक मिनट लेना है और हमें इस शब्द के साथ समय व्यतीत करना है। इस शब्द का क्या अर्थ है? यह समस्त पुराने नियम के महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है। हमने पहले ही परमेश्वर के व्यक्तिगत शब्द यहवे के अर्थ को सीख लिया है, ठीक है। यहां है तुम्हारा दूसरा इब्रानी वाक्य, आपको अपने थूक को अंदर खींचना होगा। हसद वह शब्द है जो कि पुराने नियम की धर्मशास्त्र की शिक्षा का केंद्र है, और अंग्रेजी भाषा में किसी भी वाक्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, ना ही किसी और भाषा में जिनका मैं ज्ञान रखता हूं। हसद परमेश्वर की विश्वास योग्यता और ईमानदारी को दिखाता है, परंतु जो बात कठिन है वह है इस वाक्य में विश्वास योग्यता और ईमानदारी में एक संबंध पाया जाता है, उसे अनुवाद करना। यह आमतौर पर पाई जाने वाली विश्वास योग्यता या ईमानदारी नहीं है, परंतु यह वह शब्द है जो यह कहता है परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक संबंध में प्रवेश किया। हम इसे वाचा कहते हैं, और इस वाचा के संदर्भ में परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और जो भी उसमें जरूरत है, इसका अर्थ है मैं तुम्हारी चट्टान हूंगा, मैं तुम्हारा छुटकारा देने वाला हूंगा, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला हूंगा, मैं तुम्हारा मुक्ति दाता हूंगा और मैं तुम्हें सुरक्षा देने वाला हूंगा। यह सभी बातें हैं जिनके लिए मैं वाचा के संबंध में संदर्भ में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। और भी बहुत सी बातें हैं जहां पर बाइबल परमेश्वर आप पर हसद है और मुझ पर हसद है, परंतु आपको और मुझको हमारे परमेश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में समर्पित रहने के लिए कहा गया है, जो कि हमारी वाचा के संदर्भ में है। हसद शब्द का यही अर्थ है, और इसीलिए कोई भी अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है जो इसे अनुवाद कर सके, और यह दृढ़ निष्ठा और ईमानदारी है, क्योंकि एक संबंध है जो कि परमेश्वर में, जो कि हमारा परमेश्वर होगा और हम में, जो हम उसके लोग हैं, बहाल हुआ है। हसद शब्द का यही अर्थ है। इसके लिए जब हन्ना कहती है वह अपने विश्वासियों के लोगों को के पांव को संभालेगा, वह इस बात पर जोर दे रही है कि परमेश्वर की वाचा का परमेश्वर अपनी वाचा के प्रति उन लोगों के प्रति विश्वास योग्य रहेगा जो कि वाचा के अपने हिस्से के प्रति विश्वास योग्य हैं। जय आमतौर पर लोगों के लिए वायदा नहीं है, जय परमेश्वर का पिता होना और उसके बाई होने वाली बातचीत है। वह परमेश्वर का उसके लोगों के प्रति वाचा का समर्पण है, और हन्ना की वाचा के परमेश्वर के प्रति समर्पण है। वह विश्वास योग्य रहेगा और वह भी विश्वास योग्य रहेगी। हमने पहले कहा था कि परमेश्वर जो सत्य है उसके द्वारा वह न्याय करेगा, और हम जानते हैं सत्य क्या है। जिस स्तर से परमेश्वर न्याय करेगा वह उसकी वाचा है, और जिस स्तर से परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा वह उसके वाचा के लोगों के प्रति उसकी विश्वास योग्यता है, और उन लोगों के प्रति जो उसके साथ संबंध में है, कैसे वह अपने वाचा के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे हैं। यदि आप और मैं इस वाचा के संबंध में से बाहर रहेंगे, यदि हम वाचा के संबंध से बाहर रहते हैं, यदि हम वाचा के रिश्ते को तोड़ देते हैं, तो हन्ना कहती है परमेश्वर तुम्हारे विरोध में गरजेगा, परमेश्वर तुम्हें शाप देगा। परंतु यदि हम वाचा के संदर्भ में रहते हैं, यदि हम परमेश्वर का प्रत्युत्तर परमेश्वर के पूर्ण हृदय से, प्राण से और अपनी शक्ति से प्रेम करने के द्वारा देते हैं, यदि आप परमेश्वर का प्रत्युत्तर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, और वह जो कहता है वह है, और जो वह कहता है वह करेगा, उसने कहा है वह करेगा, प्रत्युत्तर देंगे और आनंद के साथ आज्ञा पालन करेंगे, तो वह यह वह लोग हैं जिन्हें परमेश्वर आशीष देगा। यह वह लोग हैं जिनके पांव की सुरक्षा परमेश्वर करेगा। हसद का यही अर्थ है। हन्ना का गीत विश्वास की पुकार है, जो पूरी बाइबल में विश्वास की महान पुकार है। मैंने अक्सर कहा है कि यह एक बुनियादी प्रश्न है। यदि यह बुनियादी प्रश्न नहीं है, तो क्या आप या मैं यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर वक्त भला है? मेरा अर्थ है यह है कि जीवन का बुनियादी प्रश्न, यहां तक मैं आपको बता सकता हूं, जहां तक मैं कह सकता हूं, हन्ना की पुकार यह है, हाँ यही मैं विश्वास करती हूं। आए मैं हन्ना के गीत को एक बार फिर से दोहराता हूं। आप इसे इस बार सुनेंगे तो आपने पहले नहीं सुना है। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरोध में खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उदार से आनंदित हूं। जीवन में सब कुछ होने के बावजूद यह हन्ना के विश्वास की पुकार है। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़कर और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की बातें मत करो, अंधेर की बातें तुम्हारे मुख से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और वह कामों को तोलने वाला है। सूरवीरों के धनुष्य टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेंटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी और जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरना जो बांझ थे उसकी सात हुए और अनेक बालकों की माता गुलती जाती है। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसमें से निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को दूली में से उठाता और दरिद्र को गुरे में से निकाल कर खड़ा कर देता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर यगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, और कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। जो यहोवा से झगड़ते हैं वह चकनाचूर होंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गरजेगा। पृथ्वी यहोवा की शोर तक यहोवा न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। अब यदि यह विश्वास नहीं है तो मैं नहीं जानता यह क्या है। यह हन्ना की उस ज्योति में पुकार है जो वह देख रही है और जो कुछ उसने सीखा है। और हन्ना ने बहुत सी बातें सीखी या नहीं? हन्ना ने इस बात को सीखा है कि जीवन की लड़ाई मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं लड़ी जा सकती है। नौ आयत में एक बहुत ही अच्छा वाक्य है, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। यह शक्ति के द्वारा नहीं कि हम लड़ाई पर विजय प्राप्त करते हैं, परंतु लड़ाई परमेश्वर की है। यह न्यायियों में योद्धा था या नहीं है, और वह आज भी योद्धा है। बहुत से ऐसे पद हैं जो इस शीर्षक को उठाते हैं। मेरा पसंदीदा जिर्मिया 9 की 23 आयत से शुरू करके, यहोवा जो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और मुझे समझता है, और मैं ही वह यहोवा हूं। वहां पर है आपका हसद, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं। जय परमेश्वर है जो निर्बल को बलवान बनाता है, जय परमेश्वर है जो विजयी को पराजित करता है और पराजय लोगों को विजयी बनाता है। वह योद्धा है जिसने यह किया। हन्ना ने यह सीखा कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को आशीष देता है, और इस विश्वास में से विश्वास योग्य आज्ञा पालन बहता है। इस बात पर विश्वास करना कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, और हमें परमेश्वर पर केंद्रित एक परमेश्वर को मानने वाला जीवन जीना चाहिए। हम परमेश्वर को मजबूर नहीं करते हैं कि वह हमारी चाहतों से प्रतियोगिता करे, ना ही जिन वस्तुओं को हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनका हमारे पास मंदिर है। शायद हम सोचते हैं कि उन सभी में परमेश्वर सबसे ऊपर है, परंतु शायद वह नहीं है। यदि हमारे पास देवताओं का मंदिर है, परंतु हन्ना ने यह सीखा, या तो वह सभी का प्रभु है या वह किसी भी बात का प्रभु नहीं है। वह एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाली मजबूत औरत है। वह परमेश्वर के खंड बनाने से मना करती है, और ज्यादा से ज्यादा मैं वाक्यों के ऊपर सोचना पसंद करता हूं। हम सभी में यह योग्यता है कि हम परमेश्वर के खंड बना दें। हम यह सोचें कि मैं उसे रविवार की सुबह दे दूंगा, परंतु जो शेष है उसे मैं अपने पास रखूंगा। हन्ना ऐसा कुछ भी नहीं जानती है, ना ही यीशु जानता है। कोई खंड बनाना नहीं है। जहां तो एक परमेश्वर है, जहां हम बहुत से देवताओं की आराधना करते हैं, इनके बीच में कोई ग्रे क्षेत्र नहीं है, और यह हन्ना के विश्वास की पुकार है, और यही उसने सीखा है। अब पहला सैमुअल 2 में इतना समय क्यों व्यतीत कर रहा हूं? ठीक है, मैं इसे पसंद करता हूं, परंतु इसमें कुछ और भी है जिसे धर्मशास्त्र की शिक्षा हन्ना अपने भजन में जाहिर कर रही है। वह धर्मशास्त्र के ढांचे को पहला सैमुअल और दूसरा सैमुअल के धर्मशास्त्र के प्रभाव में पेश करती है। और वास्तव में यदि आप दूसरा सैमुअल के अंत में जाएं तो आप दाऊद के भजन को सुनेंगे, जिसे आज सुबह स्टीव ने पढ़ा था, और ध्यान से देखने में वह हन्ना के भजन जैसा ही है या नहीं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हन्ना का भजन शुरू में रखा है, उन्होंने दाऊद की स्तुति अंत में रखी है, और वह धर्मशास्त्र के पहला सैमुअल और दूसरे सैमुअल के बुक एंड्स हैं। और वह हमें धर्मशास्त्र के अनुसार यह समझने में सहायता करते हैं कि जैसे हम राजाओं के विषय में पढ़ते हैं तो क्या हो रहा है, कैसे वह बदलाव परमेश्वर राजा है से मनुष्य के राजा होने की ओर जा रहा है। और जैसे हम इन पदों को पढ़ते हैं, हम एक सी बातें देखते हैं कि परमेश्वर हमारा राजा है। वह हमें हसद करने के लिए और हमारी ओर से बुलाया गया है, और हम वास्तव में हसदिम होने के लिए बुलाया गया है। और कुछ प्राचीन अबरानी भाषा के शब्द आधुनिक अबरानी भाषा में शाउल। और इन सभी धर्मशास्त्र के बुक एंड्स और शीर्षक के साथ पहला और दूसरा सैमुअल तैयार है। हम हन्ना के भजन के आगे चलते हैं और हम शैमुअल की कहानी को पढ़नी शुरू करते हैं, और अंत में हम शाउल की कहानी पर पहुंचते हैं। मैंने पहला शैमुअल 8 पर जाऊंगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय पर इसराइली लोग बदलाव चाहते हैं। वास्तव में वह वाचा से बाहर निकलना चाहते हैं, वह शैमुअल की संतान की ओर देखते हैं। वह दुष्ट हैं, दुष्ट संतान है। वह इस बात को समझते हैं कि राजाओं की तरह उनके जहां उत्तराधिकारी नहीं होंगे और अपने मन में वह थक चुके हैं। वह दूसरों की तरह बनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका एक राजा हो जो उनके लिए जाकर युद्ध करे। इसलिए पहला सैमुएल 8:4 से शुरू करके तब सब इसराइली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उनसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को देखें कि जहां पर क्या चल रहा है। परमेश्वर ने इसराइल राष्ट्र को बनाया, वह उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया, उसने उनके लिए युद्ध किया, उसने उन्हें वायदे का देश दिया ताकि वह परमेश्वर की प्रजा बन सके, ताकि वह एक ऐसा देश बने जिनके ऊपर परमेश्वर राज्य करता है। पीछे जाकर निर्गमन 19 में 10 आज्ञाएं मिलने से एक अध्याय पीछे परमेश्वर इसराइली लोगों को कहता है, तुम दूसरे लोगों से भिन्न हो, तुम जाजकों की मंडली हो, तुम्हारे द्वारा जो आशीष मैंने अब्राहम को दी थी वह समस्त संसार को मिलने जा रही है, तुम्हें भिन्न होना होगा, परमेश्वर तुम्हारा राजा है और तुम जाजकों का राज्य हो जो संसार के ऊपर आशीष लेकर आ रहे हो। और इसराइली लोगों ने कहा, नहीं, हमें यह नहीं चाहिए। और इसीलिए वह जो वहां पर कर रहे थे वह गलत था, यह बहुत ही पापी काम था, वह परमेश्वर को अस्वीकार कर रहे थे, वह वाचा से बाहर जा रहे थे। परमेश्वर कहता है, ठीक है शमूएल, उन्हें चेतावनी दे, उन्हें बता कि राजा के होने से क्या होता है, यह एक सुंदर चित्र नहीं होगा, उन्हें वह दे दे जो वह चाहते हैं, उन्हें शाऊल दे। और इस तरह से कहानी खुलती है। कृपया बहुत ही ध्यान से सुने, जब इसराइली लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर निकलकर मनुष्य राजा के अधीन आ गए तो परमेश्वर ने अपना सिंहासन नहीं छोड़ दिया है। यदि आप पहला सैमुएल और दूसरे सैमुएल को पढ़ें तो आप इस बात को इन दोनों पुस्तकों में पढ़ेंगे, क्योंकि एक मनुष्य राजा बन गया, इसका अर्थ यह नहीं था कि परमेश्वर ने राजा बनना छोड़ दिया, वह अब भी राजा है और वह पूर्ण नियंत्रण में है। इसराइली लोगों का राजा परमेश्वर का उपाध्यक्ष रीजेंट है, उसे राजा को उत्तर देना पड़ता है और वह अपनी जगह से राज्य करता है। परमेश्वर ने अपने राज्य को और अपने अधिकार को शाऊल या दाऊद या सुलेमान के हाथों में नहीं दिया है, वह अब भी राजा है। और कहानी आगे बढ़ती है और जैसे अक्सर होता है, शाऊल बहुत मजबूती से शुरू करता है परंतु बहुत निर्बलता में अंत कर देता है। हम न्यायियों के साथ इस वाक्य को जोड़ते हैं, यह अच्छे समय थे और बहुत बुरे दिन थे, आज भी ऐसे ही है। इसलिए वस्तु में बहुत अच्छी तरह से शुरू हुई, वह बाहर गए, उन्होंने जाकर अमोनियों को पहला सैमुएल उसके 19 में पराजित किया। 13 में शाऊल कहता है, आज यहोवा ने इसराइलियों को छुटकारा दे दिया है। देखें, वह अभी भी परमेश्वर को महिमा दे रहा है, वह राजा है छोटा के, वह समझता है कि परमेश्वर अभी भी राजा है बड़े के साथ, कि परमेश्वर अभी भी योद्धा है, वह विजय प्रदान करता है, वह अभी भी यह समझता है। जय अच्छी बात है। 14 जोनाथन उसका पुत्र बाहर जाकर फिलिस्तियों को पराजित कर देता है और जोनाथन कहता है, क्योंकि कुछ भी परमेश्वर के छुटकारे के काम को रोक नहीं सकता है। दोनों पिता और पुत्र इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर अभी भी योद्धा है, यह परमेश्वर है जो विजय देता है। परंतु फिर जैसे अक्सर होता है, बातें नीचे की ओर जाना शुरू कर देती हैं, वह तेजी से नीचे की ओर जाती हैं। शाऊल जाजक नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है कि वह बलिदान कर सके, वह शमूएल का इंतजार कर रहा है, शमूएल वहां नहीं आया है, इसलिए शाऊल जाकर बलिदान अर्पण कर देता है। बड़ी नहीं नहीं, जब तक आप जाजक नहीं आप बलिदान नहीं अर्पण कर सकते हैं। इस वजह से वह मुसीबत में पड़ जाता है। परमेश्वर शाऊल को बुलाता है, वह अभी अमी लोगों को खत्म कर दे। शाऊल ऐसा नहीं करता है और अंत में 15 में परमेश्वर शमूएल को कहता है, वह शाऊल से जाकर बात करे और उसे बताए कि परमेश्वर ने उसे रद्द कर दिया है। पहला शमूएल की 15:26 में शमूएल ने शाऊल से कहा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, यहोवा ने तुझे इसराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। सफलता और असफलता का पैमाना बाहरी नहीं है, जैसे नहीं है कि आपने कितनी विजय प्राप्त की, आपकी कलीसिया कितनी बड़ी है। सफलता का पैमाना है, क्या आप और मैं शाऊल वाचा के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं। यह वह पैमाना है जिसके द्वारा सफलता को नापा जाता है। और शाऊल ने परमेश्वर के वचन को रद्द किया, वह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं था और इसीलिए परमेश्वर ने उसे पराजित करार दिया और उसे बताया कि अब वह इसराइल का राजा नहीं है। परमेश्वर के न्याय का पैमाना वाचा के परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता थी और आप देखिए हन्ना इसे जानती थी। यह सब बाहरी साजो सामान नहीं है। यह है क्या मैं विश्वास योग्य हूँ, क्या मैं परमेश्वर से अपने पूर्ण हृदय प्राण और शक्ति से प्रेम रखता हूँ, क्या मेरे भीतर वह प्रेम है जिसकी परिभाषा वाचा देती है कि वह आनंदित आज्ञा पालन से आता है, या परमेश्वर का पैमाना है जिससे वह न्याय करता है। जय वह पैमाना है जो सत्य है, जय था जिसे हन्ना ने समझा और शाऊल ने इसे नहीं समझा, इसलिए शाऊल को बताया जाता है क्या वह राजा नहीं है। और जैसे आप इस कहानी को आगे पढ़ते हैं, शाऊल के लिए जीवन नीचे की ओर जाता है। वह बार बार दाऊद को मारने का प्रयास करता है, ऐसे लगता है जैसे वह पागल हो गया है। शमूएल की मृत्यु के पश्चात उसे जानकारी चाहिए और वह एंडोर में एक जादूगरनी के पास जाता है और उसे कहता है कि वह शमूएल को बुलाए, और अंत में फिलिस्तियों के द्वारा मार दिया जाता है, उसका सिर काट दिया जाता है, उसकी लाश शहर की शहर पनाह के ऊपर लटका दी जाती है। इसराइल के राजा के लिए यह बहुत था। हन्ना क्या जानती है जिसके विषय में शाऊल नहीं जानता था? हन्ना ने इस बात को समझा कि परमेश्वर राजा है। हन्ना ने समझा कि परमेश्वर नियंत्रण में है। हन्ना ने इस बात को समझा कि परमेश्वर चट्टान है और मातरूसी की मुक्ति, सुरक्षा और पनाह वह सब बातें हैं जिनको हम चाहते रहते हैं। हन्ना ने इस बात को समझा कि जिस बात की हमें परवाह करनी चाहिए वह बाहरी संसारी कामयाबी नहीं है। जिस बात की हमें परवाह करनी चाहिए वह है कि हमें विश्वास योग्य होना चाहिए, हमें परमेश्वर के ऊपर केंद्रित मौलिक जीवन जीना चाहिए, हमें परमेश्वर को कभी भी इस युग के दूसरे देवताओं के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। वह बहुत से हैं या नहीं है, हम मौलिक एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं और एक ही परमेश्वर है और वह है यावे, और यही वह है, सिर्फ वही है जिसकी सेवा हमें जोश की एक एक बूंद जो हमारे शरीर के भीतर है उसके साथ करनी चाहिए। इस बात को हन्ना जानती थी और शाऊल नहीं जानता था। आप जानते हैं पुराना नियम इस बात का गवाह है और बहुत से लोग इसे पूरी तरह से समझते नहीं है। क्या आपने देखा है कोई मेरे पास पहली सभा के पश्चात मेरे पास आकर कहने लगा मैं खुश हूं? आपने यह कहा क्योंकि मैं पुराने नियम को बार बार पढ़ा है और मैं अपने आप से यह पूछता रहा हूं क्या यह लोग इस बात की कभी पूरी तरह से समझेंगे? और उत्तर है नहीं, वह इसे कभी नहीं समझ सके। मुझे नहीं पता कि मैंने आपके साथ यह बांटा है या नहीं, परंतु इन पुराने नियम की कहानियों को मैंने नहीं चुना। मैं किसी और को जो पुराने नियम को अच्छी तरह से जानता था चाहता था वह इन्हें चुने, और उसका नाम है गैरी पराठीको। वह गॉर्डन कॉर्नवेल थियोलॉजिकल सेमिनरी में जहां मैं पढ़ाता था वहां पुराने नियम की शिक्षा देते थे, पुराने नियम में PhD, अपने पूरे जीवन में उन्होंने शिक्षा दी। यह गैरी के लिए बहुत ही पीड़ा वाला था कि वह पुराने नियम को 25 से 30 कहानियों में काट दे। आप इस कहानी को छोड़ नहीं सकते हैं। आपको पता है गैरी मेरे मित्र सिर्फ 30 से ज्यादा नहीं, और मैंने उसे गुरुवार या शुक्रवार को फोन किया क्योंकि मैं संदेश के साथ बहुत ही निराश था। गैरी, जो कहानियां तुम मुझे दे रहे हो उनमें समस्या यह है कि कहानियों में अदाकारों के नाम तो भिन्न है परंतु यह बार बार एक ही कहानी है। यह भी परमेश्वर है, वह नियंत्रण में है, वह मालिक है। हमें बुलाया गया है कि हम उससे प्रेम करें, हमें बुलाया गया कि हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहें और वह विश्वास आनंदित आज्ञा पालन के द्वारा बह सके। गैरी, यह एक ही बात बार बार है और मैं एक ही बात का प्रचार नहीं कर सकता। तुम मुझे यह सब क्यों दे रहे हो? मैं बहुत ही हार्वर्ड PhD के लहजे से गैरी से कहा, डह बिल, यही तो मुख्य बात है, यह पुराने नियम की मुख्य बात है जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं। तुम उन्हें बार बार बताओ, तुम उनके पास न्याय भेजो, तुम उनके पास राजा भेजो, वह समझते नहीं है, तुम उनके पास नबी भेजो, वह समझते नहीं है। और वास्तव में बिल मुख्य बात यह है कि वह इसे कभी समझेंगे भी नहीं। शायद दाऊद, हन्ना, यहोशू जैसे कुछ असाधारण लोग होंगे जो दूसरों से थोड़ा ज्यादा समझ लेंगे, परंतु ज्यादातर पुराने नियम के लोग इसे समझते नहीं है और वास्तव में वह इसे ले भी नहीं सकते हैं। यह पुराने नियम की मुख्य बात है। 1000 वर्ष पश्चात मरियम, हन्ना, शमूएल और शाऊल के 1000 वर्ष पश्चात एक और औरत थी जिसके कोई संतान नहीं थी, और परमेश्वर ने उसके गर्भ को जीवन दिया, और मरियम ने परमेश्वर के उस जीवन के वरदान को अद्भुत रीति से वैसे ही प्रत्युत्तर दिया जैसे हन्ना ने दिया था। मैं मरियम के वजन को कुछ समय के पश्चात देखूंगा, जो लूका 1 अध्याय में है, परंतु यह बहुत ही रोचक है। आप घर जाकर हन्ना के वजन को देखें, दाऊद के वजन को देखें, और फिर आप मरियम के आनंद के वजन को देखें, और आप इस बात को देखने जा रहे हैं वह सभी एक ही बुनियादी बात कहते हैं। और मरियम ने पुत्र को जन्म दिया, उसके ने जीवन को व्यतीत किया और वह मार गया, और इसी क्रिया में यीशु ने वह कर दिया जो कोई और ना कर पाया। उसने परमेश्वर को पूर्ण रीति से अपने हृदय प्राण और शक्ति से प्रेम किया, और जब यीशु क्रूस पर मरा तो उसने ना सिर्फ हमारे पापों की कीमत दी, पाप उन लोगों के द्वारा भी हुए थे जिन्होंने परमेश्वर को कभी कभी पसंद किया था, परंतु उसकी मृत्यु वह ले आई जिसे हम नया नियम कहते हैं। और नए नियम में पुराने नियम की तरह है जहां परमेश्वर को राजा कहा गया है, और हमें विश्वास के लिए बुलाया गया है, परंतु जो नए नियम के बिन है वह है कि जिर्मिया की भविष्यवाणी के अनुसार नए नियम में परमेश्वर को प्रेम करने की एक ऐसी शक्ति आती है जो पवित्र आत्मा के बिना हम कर ही नहीं सकते थे। जब वह क्रूस पर मरा, याद करें, उसने अपने चेलों को ऊपर वाले कमरे में क्या कहा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु जदू मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और उसकी क्रूस के ऊपर मृत्यु के द्वारा मसीह ने नए नियम में एक वाचा दी है जो वाचा के लोगों को सामर्थ्य देती है कि वह वाचा का आज्ञा पालन कर सके, वह परमेश्वर से अपने पूर्ण हृदय और प्राण से और शक्ति से प्रेम कर सके। यह इसी शक्ति के द्वारा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। हम जान पाते हैं कि विश्वास के बगैर परमेश्वर को खुश करना असंभव है, और वास्तविक विश्वास हमेशा विश्वास योग्य और आनंदित आज्ञा पालन से बहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी समझ से परे गहराई में जाए हम जान पाते हैं कि हम परमेश्वर को इस संसार के देवताओं के साथ मुकाबला करने के लिए नहीं कह सकते हैं। और पवित्र आत्मा जब हमें पाप के विषय में कायल करता है तो वह हमें कायल कर रहा है कि एक ही परमेश्वर है, और मानवीय पाप की योग्यता यह है कि वह दूसरे देवताओं की उपासना करे। और फिर भी पवित्र आत्मा कहता है कि एक ही परमेश्वर है, या तो आप उसे प्रेम करेंगे और संसार से घृणा करेंगे, या संसार से प्रेम करेंगे और संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है। पहला यूहन्ना 2:15, तुम ना तो संसार में और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है, और संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जय बहुलवादी संसार के लिए एक चुनौती है। संसार कहता है कि बहुत से ईश्वर हैं, आप उनमें से एक उठाकर उसकी सेवा कर सकते हैं, और हन्ना और दाऊद और पवित्र आत्मा के काम के द्वारा मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और मैं यह समझेंगे कि यह स्वीकार्य नहीं है। हमें हन्ना के शब्दों में बुलाया गया है जो 2 अध्याय में गूंजते हैं, उसके जैसा कोई और पवित्र नहीं है, तेरे सिवाय कोई और नहीं है, हमारे परमेश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं है। और यह पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हम दिन के अंत में यह समझते हैं कि यह संसार का सुख महत्वपूर्ण नहीं है, जय आधे दिल वाला शाऊल जैसा समर्पण नहीं था। और दिन के अंत में पवित्र आत्मा हमें बताता है कि यह मानव उपलब्धि का मुद्दा नहीं है, यह न्याय का आधार नहीं है, परंतु न्याय का आधार वाचा है। और परमेश्वर कह रहा है, जय बात मेरे लिए महत्व रखती है, जो बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है वह कोमल और नम्र हृदय है, एक ऐसा दिल जिसे परमेश्वर ने हाथ से मोड़ा है। पवित्र आत्मा ने शक्ति दी जो उसकी आज्ञा पालन पूरी करने को तैयार था, परमेश्वर के लिए बिका हुआ है, मौलिक तौर पर एक ईश्वर की उपासना करने वाला है, और मौलिक रूप से परमेश्वर के ऊपर केंद्रित जीवन के लिए समर्पित है। यह सब इसलिए संभव है क्योंकि नए नियम में परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमें शक्ति देने के लिए भेजा है कि हम वाचा के अपने हिस्से को पूरा करें। हमारे राजा की विजय का उत्सव मनाए, 1 कुरिन्थियों 11:23। आज की सुबह मैं आपको अपने राजा की विजय का उत्सव मनाने के लिए निमंत्रण देना चाहता हूं, और वह बड़े के साथ शुरू होता है। जब यीशु ने नया नियम दिया वह उसकी मृत्यु के द्वारा था, और एक मृत्यु में उसने अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त की, और वह मृत्यु थी और शैतान गिर गया। और जय यीशु के यहूदी त्योहार फसे को फिर से अनुवादित किया गया है, और इसी का प्रचार हमें करना है कि यीशु की मृत्यु ने हमारे पापों की कीमत दे दी है। जय यीशु की मृत्यु थी जिसने हमें नई वाचा दी है, जिसके द्वारा हम आत्मा से बढ़ सकते हैं और परमेश्वर को पूर्ण हृदय से और शक्ति से और जो कुछ भी हमारे पास है उसके साथ प्रेम कर पाते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 में पौलुस बताता है कि कैसे यीशु ने यहूदी त्योहार को फिर से अनुवादित किया, और उसने कहा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। मैं आपको बुलाता हूं कि आप हमारे राजा के उत्सव को मनाने के लिए आए। वह पूरी तरह से विजयी है, वह और नए नियम की वाचा वह अपनी मृत्यु के द्वारा लेकर आया है, और अब हम उसके हसदिम बन गए हैं। हम उसके प्रति विश्वास योग्य रह सकते हैं जैसे वह हमारे प्रति रहा है। हम रोटी में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और मैं आपको कहता हूं कि आप इसे पकड़ कर रखें ताकि हम सभी एक साथ लें। प्रभु, तेरे जैसा कोई और पवित्र नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं है, और यह वह परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, और वह आपका परमेश्वर बनने के लिए आपके साथ रिश्ता चाहता है कि आप उसके लोग बन सकें, और यह संभव हो पाया क्योंकि उसका पुत्र आपके और मेरे पापों के लिए मर गया। आए हम उसकी मृत्यु का प्रचार करें। मैं जानता हूं कि यह पवित्र समय है, परंतु यह आनंद का समय भी है। मरियम के भजन में आप मरियम के विश्वास की पुकार को सुने। मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना उज्जवल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को शूशे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया और के अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसकी वंश पर सदा रहती है, जैसे उसने हमारे बाप दादों से कहा था। मेरा प्राण मेरे प्रभु की सराहना करता है, और मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर मेरे मुक्तिदाता से आनंदित होती है। कानों से कानों तक मुस्कुराते हुए हम परमेश्वर के उपहार के लिए आनंदित हैं। आप ऐसे लोग बन जाएं जिनका परमेश्वर विजयी राजा है, और जब हम इसे देख नहीं सकते हैं, जय हमें एक अवसर देता है कि हम अपने विश्वास की पुष्टि और भी ज्यादा कर सके कि परमेश्वर पहला और दूसरे सैमुअल के इतिहास में था। अंदाजा लगाएं, वह आज भी नियंत्रण में है। आप शांति के साथ जाएं।